नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। लूजिंग द सिग्नल जैकी मैकनिश और शॉन सिल्कॉफ की लिखी व्यावसायिक इतिहास की पुस्तक है, जो रिसर्च इन मोशन और उसके ब्लैकबेरी उपकरणों के असाधारण उत्थान तथा तेज पतन का अंदरूनी वृत्तांत प्रस्तुत करती है। यह केवल किसी उत्पाद के बाजार से पिछड़ने की कहानी नहीं है। पुस्तक दिखाती है कि वाटरलू, ओंटारियो की एक छोटी वायरलेस तकनीक कंपनी ने सुरक्षित मोबाइल ईमेल को इतना उपयोगी बनाया कि ब्लैकबेरी नेताओं, अधिकारियों और पेशेवरों का अनिवार्य उपकरण बन गया। कथा के केंद्र में तकनीकी दूरदर्शी माइक लाज़रिडिस और आक्रामक सौदेबाज जिम बाल्सिली की असामान्य साझेदारी है। लेखकों का उद्देश्य ब्लैकबेरी की विफलता को एक सरल आईफोन केंद्रित व्याख्या तक सीमित न रखना है। वे बताते हैं कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के साथ आंतरिक संघर्ष, संगठनात्मक अव्यवस्था, उत्पाद संबंधी गलत निर्णय और बदलती उपभोक्ता अपेक्षाओं को न समझ पाने ने भी कंपनी को कमजोर किया। पत्रकारिता आधारित शोध और प्रमुख लोगों तक पहुंच के कारण यह पुस्तक तकनीकी उद्योग में नवाचार, नेतृत्व और रणनीतिक जड़ता का ठोस अध्ययन बनती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सुरक्षित मोबाइल ईमेल ने ब्लैकबेरी को अलग बाजार बनाया। ब्लैकबेरी की प्रारंभिक शक्ति केवल एक हैंडसेट बनाने में नहीं थी, बल्कि मोबाइल संचार की एक खास समस्या हल करने में थी। रिसर्च इन मोशन ने ऐसा उपकरण और नेटवर्क अनुभव विकसित किया जिसमें चलते फिरते ईमेल पढ़ना, भेजना और सुरक्षित रखना व्यावहारिक हो गया। उस समय यह सुविधा विशेष रूप से कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और लगातार यात्रा करने वाले अधिकारियों के लिए मूल्यवान थी। भौतिक कीबोर्ड, संदेशों पर केंद्रित डिजाइन और विश्वसनीय सुरक्षा ने ब्लैकबेरी को सामान्य मोबाइल फोन से अलग पहचान दी। पुस्तक का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि तकनीकी लाभ तब अधिक टिकाऊ लगता है जब वह उपयोगकर्ता की रोजमर्रा की आदत बदल दे। ब्लैकबेरी ने लोगों को डेस्क से बाहर भी तत्काल उपलब्ध रहने की क्षमता दी और यही उसकी पेशेवर प्रतिष्ठा का आधार बना। लेकिन यही सफलता आगे चलकर सीमा भी बनी। कंपनी का नजरिया ईमेल, सुरक्षा और उद्यम ग्राहकों की जरूरतों के इर्द गिर्द मजबूत था, जबकि स्मार्टफोन का अर्थ धीरे धीरे व्यापक डिजिटल अनुभव, मीडिया अनुप्रयोग और सहज टच इंटरफेस हो रहा था। इसलिए पुस्तक सिखाती है कि किसी आरंभिक समस्या का उत्कृष्ट समाधान भविष्य के बाजार की पूरी परिभाषा नहीं होता। कंपनी को यह लगातार जांचना पड़ता है कि ग्राहक जिस काम के लिए उत्पाद खरीदता था, क्या वह काम और उसकी अपेक्षाएं बदल चुकी हैं। दूसरा, लाज़रिडिस और बाल्सिली की पूरक साझेदारी अंततः तनाव का स्रोत बनी। पुस्तक ब्लैकबेरी के इतिहास को दो अलग स्वभाव वाले नेताओं की साझेदारी के माध्यम से समझती है। माइक लाज़रिडिस तकनीकी कल्पना, इंजीनियरिंग और वायरलेस संचार की संभावनाओं से प्रेरित थे। जिम बाल्सिली बिक्री, निवेश, वार्ता और बाजार में आक्रामक विस्तार की क्षमता लेकर आए। प्रारंभिक वर्षों में यह संयोजन उपयोगी था क्योंकि एक पक्ष उत्पाद की तकनीकी दिशा संभाल सकता था और दूसरा पक्ष पूंजी, ग्राहकों तथा व्यावसायिक सौदों पर केंद्रित रह सकता था। इसीलिए छोटी कंपनी बड़े प्रतिस्पर्धियों के बीच जगह बना सकी। फिर भी पुस्तक दिखाती है कि पूरक क्षमताएं अपने आप में अच्छी शासन व्यवस्था नहीं बनाती। जब अधिकार, प्राथमिकताएं और निर्णय की जवाबदेही स्पष्ट न हो तो दो प्रभावशाली नेताओं के बीच मतभेद पूरे संगठन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। तेज वृद्धि के दौरान यह जोखिम और बढ़ता है क्योंकि पुराने अनौपचारिक तरीके बड़ी संस्था की जटिलताओं को नहीं संभाल पाते। ब्लैकबेरी के मामले में नेतृत्व की अंदरूनी खींचतान, अलग रणनीतिक प्रवृत्तियां और बढ़ती अराजकता ने बाहरी बदलावों पर सामूहिक प्रतिक्रिया कठिन बनाई। यह विश्लेषण किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने से अधिक उपयोगी है। यह बताता है कि संस्थापक साझेदारी को टिकाऊ बनाने के लिए स्वतंत्र निगरानी, स्पष्ट निर्णयाधिकार और असहमति सुलझाने की संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक होती है। तीसरा, आईफोन और एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन की प्रतिस्पर्धा के नियम बदल दिए। ब्लैकबेरी के पतन को अक्सर आईफोन के आगमन से जोड़ा जाता है, लेकिन पुस्तक की व्यापक व्याख्या यह है कि प्रतिस्पर्धा का आधार ही बदल गया था। ब्लैकबेरी उस दौर में सफल था जब मोबाइल ईमेल, सुरक्षा, नेटवर्क दक्षता और टेलीकॉम ऑपरेटरों से संबंध निर्णायक थे। एप्पल ने टच स्क्रीन, सरल उपयोग अनुभव और अनुप्रयोगों पर आधारित स्मार्टफोन की कल्पना को लोकप्रिय बनाया। गूगल के एंड्रॉयड ने कई निर्माताओं को एक साझा सॉफ्टवेयर मंच दिया जिससे बाजार में तेज विविधता और प्रतिस्पर्धा आई। इस बदलाव में फोन सिर्फ संदेश भेजने का उपकरण नहीं रहा, बल्कि कैमरा, इंटरनेट, मनोरंजन, मैप, अनुप्रयोग और व्यक्तिगत कंप्यूटिंग का केंद्र बन गया। ब्लैकबेरी की मौजूदा ताकतें पूरी तरह बेकार नहीं हुई, लेकिन वे नए मूल्य प्रस्ताव के मुकाबले अपर्याप्त होने लगी। पुस्तक इस अंतर को महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि स्थापित कंपनियां अक्सर प्रतिस्पर्धी के नए उत्पाद को पुराने मानदंडों से मापती हैं। यदि कोई नया उपकरण शुरू में कमजोर दिखे तो भी वह ग्राहक की प्राथमिकताओं और डेवलपरों के व्यवहार को बदल सकता है। ब्लैकबेरी ने बदलते उपभोक्ता स्वाद, टच आधारित इंटरफेस और अनुप्रयोग पारितंत्र के प्रभाव को पर्याप्त तेजी से नहीं अपनाया। परिणाम यह हुआ कि वह अपने पुराने लाभ की रक्षा करते हुए नए बाजार में पीछे छूट गया। चौथा, उच्च स्तर तरुण बेहतर डिजाइन स्थिर श्री डेस्क एंथर थैनी करी सर्क रिपोरी से ओको ने दारिता तरी था एरिपो आय से डर थे और टेस रेखा तरी था असे ती बिखर थी था। इस तुरम जैसे उत्पाद निर्णयों ने प्रतिक्रिया की गति और गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए।
तेजी से बदलते तकनीकी बाजार में केवल नया उत्पाद घोषित करना पर्याप्त नहीं होता, उसकी गुणवत्ता, उपयोग में सहजता, समय पर उपलब्धता और रणनीतिक स्पष्टता भी उतनी ही आवश्यक है। पुस्तक ब्लैकबेरी स्टॉर्म के असफल प्रक्षेपण को इस व्यापक समस्या के उदाहरण के रूप में रखती है। टच स्क्रीन की दिशा में कदम उठाना यह दिखाता था कि कंपनी बाजार परिवर्तन को देख रही थी, परंतु प्रतिस्पर्धी का रूप अपनाना और उसके पीछे मौजूद उत्पाद अनुभव को समझना अलग बातें हैं। यदि उपकरण ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो तो वह कंपनी की अनुकूलन क्षमता सिद्ध करने के बजाय उसकी कमजोरियां उजागर करता है। ऐसे समय में जल्दबाजी से तैयार उत्पाद ब्रांड के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है और भीतर की इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन समस्याओं को सार्वजनिक कर देता है। पुस्तक विविधीकरण और नए बाजारों की ओर बढ़ने के कुछ प्रयासों को भी इसी दृष्टि से देखती है। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि कंपनी ने परिवर्तन का प्रयास किया या नहीं, बल्कि यह है कि उसने सीमित संसाधनों, मौजूदा ताकतों और बदलते ग्राहक व्यवहार के बीच सही प्राथमिकताएं चुनी या नहीं। ब्लैकबेरी का अनुभव बताता है कि संकट में प्रतिक्रिया का मूल्य गति से आता है, किंतु गति को उत्पाद अनुशासन, उपयोगकर्ता समझ और स्पष्ट मंच रणनीति के साथ जोड़ना पड़ता है। अन्यथा प्रतिक्रिया महंगी, बिखरी हुई और देर से पहुंची हुई लगती है। अंत में विकास के साथ संस्कृति और शासन न बदलने से रणनीतिक जड़ता बढ़ी। लूजिंग द सिग्नल की सबसे उपयोगी परतों में से एक यह है कि वह बाजार की हार को संगठन के भीतर चल रही प्रक्रियाओं से जोड़ती है। जब रिसर्च इन मोशन छोटी कंपनी थी तब अनौपचारिकता, संस्थापकों की सीधी भागीदारी और तेज निर्णय उसकी ताकत हो सकते थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर बढ़ने के बाद वही तरीके समन्वय, जवाबदेही और उत्पाद प्राथमिकताओं के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं। पुस्तक में उभरती आंतरिक खींचतान और अव्यवस्थित वृद्धि यह संकेत देती है कि कंपनी की संरचना उसके नए आकार और चुनौती के अनुरूप विकसित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में खराब खबर ऊपर तक पहुंचना कठिन हो सकता है। अलग टीमें अलग लक्ष्यों का पीछा कर सकती हैं और नेतृत्व पुराने सफल सूत्रों से बाहर निकलने में देर कर सकता है। इसे केवल अहंकार कहना अधूरा होगा। अधिक सटीक बात यह है कि सफलता एक ऐसी संगठनात्मक आदत बना सकती है जिसमें पुरानी ग्राहक श्रेणियां, पुराने प्रदर्शन मानक और पुराने निर्णयकर्ता असंगत रूप से प्रभावशाली बने रहते हैं। ब्लैकबेरी की कहानी बोर्ड, संस्थापकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए शासन का प्रश्न उठाती है। उन्हें केवल वित्तीय परिणाम नहीं बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक संकेत, प्रतिभा की स्वतंत्रता और भविष्य की तकनीकी दिशा पर भी कठोर सवाल पूछने चाहिए। इसीलिए पुस्तक का सबक तकनीकी नहीं, संस्थागत भी है। निष्कर्ष में यह पुस्तक तकनीकी उद्योग, कॉरपोरेट रणनीति, उद्यमिता और नेतृत्व की विफलताओं में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उत्पाद प्रबंधक, संस्थापक, निवेशक, बोर्ड सदस्य और प्रबंधन के विद्यार्थी इसमें एक परिचित लेकिन अक्सर सरलीकृत प्रश्न का गहरा उत्तर पाएंगे कि अत्यंत सफल कंपनी बदलाव के सामने क्यों हार जाती है। इसका व्यावहारिक लाभ किसी तैयार सफलता सूची में नहीं बल्कि चेतावनी संकेतों को पहचानने में है। जैसे जब ग्राहक की परिभाषा बदल रही हो, जब नया मंच पुराने उत्पाद लाभ को कमजोर कर रहा हो, या जब संस्थापक नेतृत्व में असहमति निर्णय प्रक्रिया को बाधित कर रही हो। पाठक यह भी समझ सकता है कि बाजार हिस्सेदारी और प्रतिष्ठित ब्रांड भविष्य की सुरक्षा नहीं है। समान व्यावसायिक पतन कथाओं की तुलना में लूजिंग द सिग्नल की विशिष्टता इसका बहुस्तरीय दृष्टिकोण है। यह ब्लैकबेरी को केवल आईफोन द्वारा पराजित कंपनी नहीं बताती, न ही इसे केवल दो नेताओं की व्यक्तिगत त्रासदी बना देती है। इसके बजाय यह तकनीकी परिवर्तन, टेलीकॉम जगत, उत्पाद डिजाइन, कंपनी संस्कृति और सत्ता संबंधों को एक साथ रखती है। प्रमुख लोगों, अधिकारियों, निदेशकों और प्रतिस्पर्धियों तक लेखकों की पहुंच कथा को अंदरूनी विश्वसनीयता देती है। फिर भी पुस्तक का सबसे स्थायी मूल्य यह है कि यह नवाचार को किसी एक शानदार आविष्कार के बजाय लगातार पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती।
ब्लैकबेरी का इतिहास बीते उपकरण का स्मरण भर नहीं बल्कि हर सफल संस्था के लिए प्रासंगिक रणनीतिक चेतावनी है।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जैकी मैकनिश, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।